ओम शांति। कुछ लोग और आ रहे हैं तो तब तक थोड़ा हम लोग अपनी साधना करते हैं। अगले आधे घंटे जो भी यहां से मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो मेरी संगीत यात्रा का सार है। हर धर्म में हर एक इंसान का, हर कला का अपना एक तरीका होता है ईश्वर से जुड़ने का, तो मैं अपना वो तरीका आपके साथ आज शेयर करूंगा जिसने मुझे बहुत सुख दिया, बहुत शांति दी, बहुत प्रसिद्धि भी दी, बहुत प्यार भी मिला उससे।
शून्यगढ़ शहर शहर हर बस्ती बस्ती कौन सुता कौन जागे है हे कौन सुता कौन जागे है हे लाल हमरे हम लालन के लाल हमरे हम लालन के तन सोता ब्रह्म जागे हे शून्यगढ़ शहर जल विच कवल कवल विच कलिया जल विच कवल कवल विच कलिया भवरी वासना लेता है लेता है इस नगरी के दस दरवाजे इस नगरी के
ये जो हमारा शरीर है इसके दस द्वार हैं ऐसा शास्त्रों में लिखा है। हमारी आंखें जो देखती है, कान जो सुनते हैं, हमारा पूरा शरीर की बनावट ऐसी है कि वो रचना साइंस द्वारा बन नहीं सकती। एक छोटा सा नाखून भी बनाया नहीं जा सकता। तो प्रकृति ऐसी है कि और फिर उस प्रकृति के साथ शोध हुए, ऋषि मुनियों ने अलग तरीके से आत्मा की खोज की, हर धर्म ने माना स्वीकारा, जीवन और मृत्यु के राज को बताया।
इस नगरी के दस दरवाजे जोगी फेरी नित देता है देता है शून्य गढ़ शहर शहर हर बस्ती
बस्ती कभी कभी ऐसा होता है, कोई संगीत हम सुनते हैं फिर बात करने का मन नहीं करता है। संगीत शास्त्र में भी दो तरह के नाद बताए हैं, एक आहत नाद एक अनहद नाद। आहत नाद जो हम कानों से सुनते हैं ये आहत नाद हुआ, ये आहत नाद। वायलिन पे जब हम तबले पे थाप देते हैं हवा से, अलग अलग रीति से जो नाद उत्पन्न होता है, हम अगर साइलेंस में बैठेंगे तो हमारे हृदय में एक आहत नाद है, हमारी सांसों में सो हम, ऐसे अलग अलग लोगों ने उस नाद की परिभाषा बताई। कुछ लोगों ने तीन नाद बताए पर आज हम दो नाद की बात करेंगे। दूसरा जो नाद है अनहद नाद। अनहद नाद जब मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, मेरे गुरुजी पंडित कृष्णकांत शुक्ल जी बीके थे, और मुझे बहुत बोर होता था, ज्ञान वो सुनाते रहते थे, मुरली सुनाते थे, स्लोगन कभी लेके बैठ जाते थे, कभी बोलते आज देखो बाबा ने, मतलब मुझे नहीं सुनना बाबा ने क्या बोला, मैं म्यूजिक सीखने आता हूँ, मुझे म्यूजिक सीखना है। लेकिन कई बार जब दवाई कड़वी हो तो उसको कुछ मिठास के साथ, तो ऐसे मेरे आदरणीय परम आदरणीय गुरु जी पंडित कृष्णकांत जी शुक्ल को मैं नमन करता हूँ आज यहाँ से, कि उन्होंने मुझे अनहद नाद को सुनने का तरीका बताया और फिर इतने सुंदर परिवार से कनेक्ट कराया जहाँ पे मैंने बहुत सारी लर्निंग की। अर्निंग खत्म हो जाती है, लर्निंग हमेशा रहती है। तो अनहद नाद के बारे में संगीत शास्त्र में कहा जाता है कि ये कानों से सुनाई नहीं देता है, इसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग परिभाषा बताई। अनहद नाद अगर आप बात करें तो नासा ने खोजा कि ब्रह्मांड जो ऊपर जो चांद सितारों की दुनिया, वहां पे ओम का साउंड है। वहां तक तो ऋषि मुनियों ने भी ओम की साधना की, महीनों सालों तपस्या करके आसपास पेड़ उग गए, उनको अपने शरीर का भान ही नहीं था। तो वो साउंड से उन्होंने उस साइलेंस की यात्रा की। मेडिटेशन में उस स्थान को एक नाम दिया गया है, निर्वाण धाम, जहां पे कोई भी भौतिक वस्तु, पांच तत्वों से बनी हुई कोई भी चीज उस स्थान पे पहुंच नहीं सकती, लेकिन संगीत पहुंच सकता है। संगीत इसलिए पहुंच सकता है क्योंकि संगीत की परिभाषा में दो नाद है, एक आहत नाद एक अनहद नाद। सो आप एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे अनहद नाद? मैं भी ऐसे ही करना चाहता था लेकिन पहली बार में हुआ नहीं था, आपका अगर हो गया तो आप लकी हैं। सो ऐसा कहा जाता है जब आप ओम की ध्वनि करते हैं तो ओम की ध्वनि जहां खत्म होती है उसके बाद अगर आप उस साइलेंस को फील करेंगे तो वो एक अनहद नाद का रूप बन जाता है। अनहद नाद उस पारलौकिक दुनिया में हमें लेके जाता है जहां पे बहुत सुख शांति का अनुभव होता है। कई लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो कुछ जंगल का साउंड लगाते हैं, कुछ लहरों का साउंड लगाते हैं, तो आज हम एक्सपीरियंस करेंगे थोड़ा थोड़ा, तीन तरह से हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो पहली बार मैं चाहता हूं आप सब एक ओम ध्वनि मेरे साथ करें। मैं आपको सरलता से बता देता हूं, आप लंबी गहरी सांस लीजिएगा। लंबी गहरी जब आप सांस लेंगे तो वो फ्यूल है एक तरह का, वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाके उस ब्लड को प्योरीफाई करती है ना, पूरे शरीर में आपके डायफ्राम में जब ऑक्सीजन जाती है तो आप एनर्जाइज यूज करते हैं। तो लंबी गहरी सांस लेके फ्यूल डालेंगे और फिर इस बुद्धि रूपी रॉकेट से आप उड़ेंगे ऊपर, है ना। आप जहां जाना चाहें, पहली बार हम एक जंगल यात्रा पे जाएंगे ओम की ध्वनि करते हुए। जितनी देर आपने ओम बोला, सपोज आपने 10 सेकंड तक अगर ओम बोला तो फिर आप 20 सेकंड तक उस साइलेंस का अनुभव करना और उस जंगल की यात्रा करना, है ना। तो ट्राई करते हैं क्या आप जंगल में पहुंच पाए ऐसा करके इस साउंड को सुन के। तो आप सब तैयार हैं लंबी गहरी सांस में 1 2 3 बोलूंगा, तीन गिनने तक आप लंबी गहरी सांस लीजिएगा और फिर हम सभी ओम की ध्वनि करेंगे, है ना, नेचुरल साउंड, बहुत लाउड नहीं। ओ और फिर इससे 2 गुना 4 गुना 5 गुना जितनी आपकी क्षमता है आप साइलेंस में रहेंगे और उस साउंड को सुनने का प्रयास करेंगे जो आपके इर्द गिर्द है। ठीक है, तो मैं 1 2 3 गिनूंगा। तो पहली यात्रा में हम एक जंगल यात्रा में जाएंगे, तो पीछे से आपको कुछ चिड़ियों की आवाज सुनाई देगी, आपको महसूस करना है आप एक जंगल में हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, 1 2 3 हो, प्रकृति का ये सुंदर संगीत महसूस करें, सांसों को धीमा रखें, बहुत सारे विचार आपके पास आ रहे हैं, आपको खींच रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर प्राकृतिक सौंदर्य में वक्त बिताएंगे, कुछ पल परमात्मा की सुंदर संरचना में। ओम शांति। फिर से वापस आएंगे हम, मन का घोड़ा कहीं भी ले जा सकते हैं, चाहे तो हम घर ले जाएं, चाहे ऑफिस ले जाएं, चाहे जंगल ले जाएं। ऐसा कहते हैं राजा विक्रमादित्य ने अपनी कर्मेंद्रियों पे ऐसा कंट्रोल कर लिया था, ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपनी कर्मेंद्रियों पे ऐसा कंट्रोल किया था कि वो जब चाहे जब वो महसूसता ले आते थे। एक छोटी सी कहानी हमारे शक्ति भाई ने मुझे सुनाई थी, आंख बंद करें आप एक बार और यहां से मन के घोड़े पे सवार होके बाहर निकलें, जहां भी आपको जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, कार से जाना है, आप सीधे अपने घर पहुंचें, घर का दरवाजा खोलें, आप सीधे किचन में जाएं, किचन में से फ्रिज खोलें, फ्रिज में आप देखेंगे एक बास्केट में नींबू रखे हैं, कुछ हरे कुछ पीले, एक हरा एक पीला नींबू निकाल लीजिए, कट कर लीजिए, थोड़े बीज निकाल लीजिए, थोड़े अंदर रह जाएंगे, कोई बात नहीं, आधा हरा आधा पीला नींबू मुंह खोल के मुंह में निचोड़ लीजिए पूरी तरह से स्क्वीज, हाँ पूरा अच्छे से, थोड़ा पल्प भी आप जबान से टेस्ट कर लीजिए, पूरा नींबू निचोड़ के थोड़ा सा और निचोड़ लीजिए, चलिए अब रख दीजिए, उसमें रस खत्म हो गया, दूसरा लीजिए, दो उनको भी निचोड़ लीजिए, हाँ थोड़ा खट्टा है कोई बात नहीं, फिर भी निचोड़ लीजिए थोड़ा अच्छे से। अब आप आंख खोलिए तो आपके मुंह में पानी आया है, तो ये अनुभूति है ना, हमारा शरीर हमारी कर्मेंद्रियां हमारी अनुभूतियों के आधार पर बहुत कुछ काम करती है, हम जो सोचते हैं हमारा शरीर में वैसे चेंजेस होने लगते हैं, तो इसलिए हमारी विचार जो हैं वो हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं, न कि हमारा शरीर हमारे विचारों को, हमारे मन को। तो मन बड़ा हुआ और मन और बुद्धि का राजा जो है वो मैं अगर सर्वशक्तिमान, यहां मैंने आके ये सीखा कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं अपनी कर्मेंद्रियों का राजा हूं, तो ये राजा बनने के लिए मुझे अपने आप को राजा समझ के और इस शरीर को, जैसे जब महाभारत में अर्जुन तो इतने बड़े धनुर्धर थे, वो मछली की आंख में निशाना लगा देते थे नीचे देख के पानी में, वहां उनसे निशाना नहीं लग रहा, डिप्रेशन हो गया, तो उनको श्री कृष्ण जी ने आत्मा का ज्ञान दिया जिससे उन्होंने अपनी कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में किया और धर्म और अधर्म का परिचय लेते हुए और उस महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की। तो ऐसी हम सबके जीवन में महाभारत चल रही है, किसी किसी के जीवन में रामायण भी चलती है, क्योंकि रावण बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। तो ये कहानियों से हमने ये सीखा है कि अगर हम अपनी कर्मेंद्रियों पे काबू नहीं रख पाए तो कई सारे लोग तिहाड़ जेल में इसलिए बंद है कि उस वक्त उनकी कर्मेंद्रियों पे उनका कंट्रोल हट गया था। मैं चाहता नहीं था पर मेरा हाथ उठ गया, हाथ मेरा राजा था या मैं हाथ का राजा था। सहन करने को कायरता कहा जाता है, जबकि शास्त्र कहता है कि सहन करना शक्ति है, इसीलिए उसका नाम सहन शक्ति दिया है। दूसरी बार फिर हम जब ओम का उच्चारण करेंगे, इस बार हम समंदर के किनारे जाएंगे, समंदर के किनारे उन लहरों में उन ठंडी हवाओं को महसूस करेंगे। इस बार इस मन के घोड़े पे राजा बन के कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप अपने मन के राजा हैं। थोड़ी देर मन को अपने वश में रखिएगा, बहुत सारे विचार आएंगे, आप विचारों को समाप्त नहीं कर सकते, आप उनको खींच के ला सकते हैं समंदर की लहरों के किनारे। तो एक बार फिर से हम लंबी गहरी सांस लेंगे, इस बार एक समंदर की यात्रा पे चलते हैं। चलिए सीधे होके बैठ जाएंगे। जब रॉकेट जाता है ना तो फ्यूल बहुत उसमें जरूरी होता है, फ्यूल खत्म हो जाए तो मुश्किल हो जाती है, इसलिए लंबी गहरी सांस लीजिएगा। चलिए शुरू करें, लंबी गहरी सांस, 1 2 3 समंदर के किनारे, हो फिर वही स्थिति हो गई, कुछ बोलने का मन नहीं करता, कुछ सुनने का मन नहीं करता, एक परम शांति का अनुभव होता है। ये जो दोनों अभ्यास अभी हमने किए, थोड़ी देर हम जंगल में घूम के आए, फिर हम घर जाके नींबू भी खा के आए, फिर हम समंदर के किनारे भी बैठ के आ गए, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। कुछ कुछ लोगों को किया, क्योंकि एक महाराक्षस कोविड के बाद में एक ऐसी बीमारी है जो इस दुनिया को अपना ग्रास बनाने वाली है। कोविड के बाद दुनिया में सबसे बड़ी महामारी बनने वाली ये बीमारी का नाम है डिप्रेशन, जो कि स्ट्रेस से शुरू होता है। हमारा दिमाग जब बहुत तेजी से चलता है, हम बहुत तेजी से जब सोचने लगते हैं तो दिमाग थक जाता है। यहाँ पे कई भाई थोड़ा स्लो काम करते हैं, लोग बोलते हैं अरे इतना स्लो क्यों है भाई, हाँ थोड़ा बादाम बादाम खाया करो। हम जब अखाड़े में जाते थे तो वहां बोलते थे इसकी आंखें नहीं टिकती, तो चंचलता जो जिसको बोलते हैं ना, हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि स्फूर्ति, जैसे डिफेंस में सिखाया जाता है कि फूर्ति हो, दुश्मन जब आ जाए तो आपको अलर्ट रहना होता है। लेकिन अगर आप घर के एसी को हमेशा 16 पे फुल फैन पे रखेंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। सीपीयू कंप्यूटर का अगर 24 घंटे चलेगा तो गर्म हो जाएगा। हमारी मशीन थोड़ी अच्छी है बेचारी, वो जल्दी गर्म नहीं होती है लेकिन खराब होती है। आप किसी भी डॉक्टर से पूछना, स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। तो स्ट्रेस कंट्रोल अगर हम नहीं करेंगे तो उस महाराक्षस के ग्रास हम भी बन सकते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? बहुत ज्यादा चीजों को एक बार में सोचना, है ना। दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है। ऐसा कहा जाता है, किसी महापुरुष ने कहा है कि जो भी समस्या बनती है उसके साथ उसका एक हल भी बनता है। अगर हम समस्या के 10 प्रकार सोचेंगे तो हम वो हल का एक प्रकार कहीं फेड हो जाता है। तो कहते हैं, बाबा भी कहते हैं मुरली में, कि हमें समस्या स्वरूप नहीं बनना है, हमें समाधान स्वरूप बनना है। तीसरी बार जो हम ओम की ध्वनि लगाएंगे, इस बार हम थोड़ा लंबा जाएंगे। इस बार हम पहले जाएंगे जो नासा ने खोजा है ना ओम, जहां हमारे ऋषि मुनि जाते थे चांद सितारों की दुनिया में, वहां ओम उन्होंने खोजा, एक फ्रिक्वेंसी फाइंड की जो कहते हैं ओम ध्वनि है। लेकिन अनहद नाद जिसकी मैं बात कर रहा था वो उससे भी ऊपर है, क्योंकि वो तो सुनाई नहीं देता है, वो कोई भी मशीन कैच नहीं कर सकती है। अच्छा, आपने देखा होगा जब नासा जब, या हमारा जो इसरो है या कोई भी जो अंतरिक्ष एजेंसी है, वो जब रॉकेट को भेजती है ना, तो वो एक कक्षा में जाके और अपनी बहुत सारी चीजों को छोड़ देता है ना, कुछ पार्ट्स उसके अलग हो जाते हैं और फिर जो हल्का वाला स्वरूप होता है वो ऊपर जाता है। और वो पता कैसे, जैसे उसको अगर चांद पे जाना है तो कैसे जाता है पता है? ऐसे ठक, ऐसे नहीं जाता है, वो ऐसे जाता है ढू 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 ढू, पता नहीं कितने चक्कर लगा के चांद, वो चक्कर में पड़ जाता है वो। आप एग्री करते हैं? घूमते घूमते जाता है। लेकिन हमारा जो रॉकेट है ना, ये आपको ट्रेन फ्लाइट सीधा घर में फ्रिज खोल के नींबू निकाल लिया था उसने, कोई हर्डल भी, कोई कहीं रुका भी नहीं, फ्यूल भी खत्म नहीं हुआ, जंगल में बढ़िया घूम के आए हम समंदर के किनारे में, ब्रीज। अच्छा, महसूस हुआ था आपको ब्रीज थोड़ा सा? सच सच बताना, थोड़ा सा हाथ हिला दो जिनको महसूस हो, और मुंह में पानी जिनके आया था वो ध्यान मेरे भी आ जाता है सुनाते सुनाते। तो तीसरी बार जब हम ओम की ध्वनि करेंगे तो मैं कुछ बातें उसके पहले आपको सुनाना चाहता हूं। एक कहानी है बड़ी अच्छी, आज मैं सचिन भाई जी से मिला था तो उन्होंने एक मुझे बड़ा अच्छा बताया कि एक सेंट फ्रांसिस जो है, जिनके नाम से बहुत सारे स्कूल हैं, अगर आप उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो जब उनकी मृत्यु हुई तो वो बहुत तेज तेज गाना गा रहे थे। मतलब ये निश्चित हो गया था कि उनकी मृत्यु अब होने वाली है, शरीर पूरी तरह से। तो उनके भाई और उनके जो अनुयायी थे वो उनको बोल रहे थे, नहीं आप ऐसा मत करो, सब बाहर आपके जो हैं लोग, क्योंकि सेंट थे ना, तो वो सब बोलेंगे अरे क्या पागल हो गए क्या, ऐसा कैसे गा रहे हैं, नहीं नहीं आपकी ग्लानी हो जाएगी, आप गाओ मत। तो उन्होंने एक बात बोली कि नहीं, मुझे ये गा के जो सुख मिल रहा है, जो अनुभूति हो रही है, मुझे ये परम सुख आज तक नहीं मिला। तो संगीत ईश्वर तक पहुंचने की सबसे सरल सीढ़ी है, शायद ये कहीं पढ़ लिया होगा उन्होंने इंग्लिश में, कि भाई संगीत से आप ना ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन संगीत में दो नाद है, एक आहत नाद एक अनहद नाद। तो शायद अनहद नाद के बारे में हम सभी को नहीं पता होता है। अनहद नाद है साइलेंस, वो डीप साइलेंस जो हमें बोलने का भी मन नहीं करता। फिर जो स्थिति अभी आपने थोड़ी देर के लिए शायद कुछ लोगों ने फील की होगी कि जब हम उस मेडिटेशन से या उस वातावरण से या उस विचार से जब वापस लौटते हैं तो हमारा साउंड में आने का मन नहीं करता है। जाने अनजाने हमारा मन हमारी बुद्धि उस निर्वाण धाम में पहुंच जाती है, लेकिन उस निर्वाण धाम के ऊपर भी एक दुनिया है जहां पे पांच तत्वों की कोई चीज पहुंच नहीं पाती। सभी ने उसके बारे में वर्णन किया है, हर धर्म में उसका जिक्र है। तो हम इस बार ओम की ध्वनि करते कोशिश करेंगे कि हम एक रॉकेट हैं, हमने सांसों रूपी फ्यूल को उसमें डालेंगे और हम ऊपर जाएंगे और हमारी सारी प्रॉब्लम्स रूपी बोझ को हम धीरे धीरे ऊपर जाते हुए छोड़ देंगे। हम चांद सितारों की दुनिया में जाएंगे और फिर उसके आगे की जो यात्रा है वो समाप्त नहीं होगी। उसके आगे जब हम साइलेंस, जब हमारे फ्यूल खत्म होगा तब भी हमारा रॉकेट ऊपर जाएगा। वो एक फिल्म आई थी उसमें बताया था कि वो फ्यूल खत्म होके भी रॉकेट घूम रहा था। हाँ, वो इंडियंस ने ही कुछ ऐसा किया था, जैसे उन्होंने बताया था कि गैस बंद कर दो तो भी तवा गर्म रहता है। तो वैसे ही ना हमारी बुद्धि में होता है कि एक बार जब वो ओम से हमारा वो स्थिति बन जाती है ना तो हमारा रॉकेट उड़ता रहता है ऊपर की तरफ, है ना। बस दूसरा विचार मत लाना। जो इंस्टॉलमेंट अभी हमको भरनी है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो आप तैयार हैं, एक बार हाथ हिला दीजिए। सा रे ग म प ध नि सा, ये संगीत का आधार है। तो हमने इसके बारे में कुछ लिखा है कि सा का मतलब है सुनते सुनाते स्वर में समा जाना। समा जाना मतलब उस अनहद नाद की तरफ बढ़ जाना, उस साइलेंस में उस सुखद अनुभूति, उस अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना जो शायद इन पांच तत्वों से बनी हुई किसी भी चीज में नहीं है। रे उसमें रमण करना, उसमें थोड़ी देर ठहरना। ग उस सुर की गहराई में जाना। म उसमें मगन हो जाना। प उसे पी जाना, कहते भाई ये तो सुर को पी गया ऐसा सुर लगाता है। ध धारण हो जाना, उस सुर ही मैं हो जाऊं, कहते ना एक स्थिति ऐसी आती है ईश्वर में, जब हम मीरा की जो स्थिति थी कि ईश्वर में वो समा गई थी, उनमें और उसमें कोई अंतर नहीं रह गया था, उनमें उनका रूप दिखने लगा था। और नी जो निर्वाण धाम में जाना, लेकिन हम निर्वाण धाम के आगे की यात्रा बिना फ्यूल के करेंगे तो बेवेयर, लाइक यू नो बिना फ्यूल के क्या रॉकेट कभी गिर सकता है। तो उधर आप थोड़ा दूसरे विचारों का बोझ अगर चढ़ाएंगे तो रॉकेट गिर जाएगा। तो उधर से हम साइलेंस वर्ल्ड में जाएंगे। तो तीसरा ओम फिर से मैं आपको बताता हूं। हम फ्यूल भरेंगे, फ्यूल भर के हम जाएंगे चांद सितारों से भी पार। नीचे आपको पृथ्वी दिखाई देगी, हाँ वो नीला ग्लोब दिखाई देगा आपको, कुछ हरियाली दिखाई। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे फिर नीचे नहीं देखना है, फिर वो चांद सितारों से पार हम जाएंगे उस निर्वाण धाम जहां पे हमारी आवाज खत्म हो जाएगी और फिर हम उस अनहद नाद को महसूस करेंगे जिसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। आज हम उसे सुनेंगे और उसको महसूस करेंगे और उस निर्वाण धाम में जाके उस परम शक्तिमान, जितने भी लोगों को ईश्वर का साक्षात्कार हुआ सबसे पहले उन्हें प्रकाश की अनुभूति हुई, चाहे स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, चाहे श्री राम परमहंस जी की बात करें, हाँ सबने बोला भी है कि एक नूर से सब जग उपजा, लाइट इज माइट, नूर अल्लाह। शायद उन सबको पहले नूर दिखाई दिया, फिर उसके बाद हुआ कि जाकी रही भावना जैसी, सो प्रभु मूरत देखी वैसी। तो जो हमारे मन का भाव होता है वो भोलानाथ भगवान उसी रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए हम उस परम धाम में उसको एक प्रकाश की तरह महसूस करेंगे, है ना। सौ सूर्य की तरह तेजस्वी प्रकाश, विवेकानंद जी ने बताया अपनी किताब में। तो अभी हम उसको एक लाइट, छोटी लाइट चमकती हुई सुखद, और हम वहां जाके और बहुत सारी उन शक्तियों को महसूस करेंगे। आप देखेंगे स्क्रीन पे जो आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा है उसमें एक योगी बैठा है और वो उस परम धाम से अपने मन की तार को जोड़े रखा है। एक सुनहरी चमकीली बीच में लाइन है, उसे कहते हैं सुर। उस सुर में एक ताकत है, लेकिन वो जो सुर आपको दिखाई देगा वो चमकीली सुनहरी लाइन में, वो आहत नाद और अनहद नाद का कॉम्बिनेशन होगा। तो दोनों नाद का प्रयोग करके हम उस परम धाम की यात्रा करके आएंगे। एक बार हाथ हिला दीजिए। चलिए तो टेक ऑफ करें, है ना, सीट बेल्ट बांध लीजिए अपनी, सीधे बैठ जाइए। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए, क्योंकि थोड़ी यात्रा लंबी है ना, टैंक क्लीन कर रहे हैं। फिर से सांस लीजिए, एक बार फिर छोड़ दीजिए। ये तीसरी बार गहरी लंबी पूरा डायफ्राम सांसों से भर लेंगे, लंबी गहरी सांस। ओ और ऊपर चांद सितारों की इस दुनिया में, और ऊपर, और सारे बोझ हटा दीजिए। अब इस साइलेंस की शक्ति से और ऊपर जाएंगे हम, और ऊपर, और ऊपर जाते जाते उस प्रकाश का साक्षात्कार करेंगे जिसका जिक्र हर धर्म में, वो हमारा परम पिता परमेश्वर, जिसने हमें धरती पे किसी खास मकसद के लिए भेजा था, जिसे हम कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी हमेशा के लिए भूल जाते हैं। वो परम पिता परमेश्वर उन शक्तिशाली किरणों को हम पे बरसा रहा है कि हमारी मन रूपी बैटरी, बुद्धि रूपी बैटरी जो पूरी तरह से कमजोर हो गई है, वो अपनी परमात्म शक्तियों से उस बैटरी को पूरी तरह चार्ज कर रहा है। जैसे जैसे वो किरणें हमारे ऊपर पड़ रही है, हमारे शरीर का पूरा कालापन, बुरे विचार, नेगेटिविटी, डर भस्म हो रहे हैं। एक श्वेत प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, वो परम प्यारा शिव परम पिता, वो भोलानाथ शिव, वो दुखों को हरने वाला, हम पे अपने प्यार की किरणें बरसा रहा है। महसूस करें इन किरणों को। सौभाग्य है जो उस परमात्मा से आज हम अपनी बुद्धि के तार को जोड़ पा रहे हैं। इस परमात्मा को खोजते खोजते न जाने कितने सालों ऋषि मुनि ने तपस्या की। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् च धर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। वादा है उसका कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, बच्चे, मैं धर्म की पुनर्स्थापना करने फिर से आऊंगा। आह्वान करें उस परम पिता परमेश्वर का कि प्रभु, हे परमेश्वर, अब मेरी बुद्धि को ऐसा सकाश दें, ऐसा तेजस्वी बनाएं कि मैं वापस जब धरती पे लौटूं तो मैं आपको भूलूं नहीं, आपका हाथ पकड़ के अपनी इस चार्ज बैटरी को भरपूर इस्तेमाल कर सकूं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरी बुद्धि को ऐसा तेजस्वी बनाओ परमेश्वर कि मैं सृष्टि में बहुत सारे सुंदर कार्य कर सकूं। मैं अपना जीवन जो आपने दिया है उसको फलीभूत कर पाऊं, उसको सफल कर पाऊं। परमेश्वर, आपने जो चुनौतियां मुझे दी है मैं उसमें पास होऊंगा, जो परीक्षाएं हैं उन्हें अव्वल दर्जे में उत्तीर्ण करूंगा। बस आप मेरा हाथ मत छोड़ना परमेश्वर, मैं आपके पास आया हूं, आज के बाद मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, यह मैं आपको वचन देता हूं। परमेश्वर, आपने मुझे चुना है आज, शक्तियों को भर के परमात्मा का शुक्रिया करके, बहुत बहुत शुक्रिया करके फिर से आएंगे हम अपने उस नीले चमकते ग्रह की ओर जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, उस रंगमंच पे आएंगे जहां पे हमें हीरो पार्ट बजाना है, हमें उस परमेश्वर का मददगार बनना है, हमें उस राम की सेना में आना है जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, रावण के संस्कारों को समाप्त कर देना है इन किरणों से, धीरे धीरे चांद सितारों से पार फिर से हम अपने वायुमंडल में आते हुए और अपने शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। अब आप अपनी कुर्सी की पेटी खोल सकते हैं, लेकिन मोबाइल फोन का इस्तेमाल मत करिएगा। तो ये परम धाम की हमारी छोटी सी यात्रा, उस परमेश्वर के साथ मिलन की अनुभूति आपको अच्छी लगी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि हर दिन आप थोड़ा वक्त निकालेंगे उस परमेश्वर के लिए। अगर गीता को भी ध्यान से हम पढ़ें तो उसमें बहुत सारी बातें, चाहे कुरान को पढ़ें चाहे गुरबानी पढ़ें, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि हम परमात्मा से अपने आप को जोड़ नहीं सकते हैं। इतना मुश्किल है ये लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि नामुमकिन है। तो मुश्किल काम ही तो करने हम आए धरती पे। आप देखेंगे कयामत के बारे में जो लिखा है कुरान में, वो सब अभी हो रहा है। घोर कलयुग के बारे में जो लिखा है वो सब अभी हो रहा है। 5 मिनट और है भाई जी, हाँ, या समापन समारोह करना है? 5 मिनट है, है? ठीक। सो इन आखिरी 5 मिनट में मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूं। आप हाथ हिला दीजिए तो सुना देता हूं। तो राम का मतलब हम समझते हैं कि राम, अब जैसे तुलसीदास जी ने पीबत राम रस बोला है, तो ये राम के बारे में बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने भी लिखा है। आप देखेंगे तो कबीरदास जी का कोई धर्म ऐसा नहीं बताया जा सकता था कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा सुंदर भजन लिखा है, वो मैं आपको सुनाता हूं। 5 मिनट का है। और कमाल की बात यह है कि ये जो भजन कंपोज किया है उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब ने किया। मैं अपने राम को रिझाऊं। अब कबीरदास जी ने क्या लिखा है,
योगी न हो न जटा बढ़ाऊ न अंग विभूत रमाऊ, योगी न हो न जटा बढ़ाऊ न अंग विभूत रमाऊ, जो रंग रंग दिए आप विधाता, जो रंग रंग दिए आप विधाता, और क्या रंग चढ़ाऊं राम को रिझाऊं, मैं अपने राम को रिझाऊं।
मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं सारंगी प्लेयर मोमिन खान साहब, मैं उनसे सीख रहा हूं आजकल, उन्होंने मुझे भजन सिखाया।
हाँ ज्ञाने कोठारे कस कर बांधू सूरत कमान चढ़ाऊं,
ये जो ज्ञान के कुठारे हैं जो यहाँ इस ज्ञान सरोवर में हमें मिले हैं, इन्हें हम कस के बांधे अपने जीवन में और हमारी सूरत पे फिर कभी गम शिकन तकलीफ परेशानी चिंताओं की लकीर ना आए। सूरत कमान, ऐसी हम कमान हमारे सूरत की चढ़ाएं।
ज्ञानी कोठारे कस कर बांधू सूरत कमान चढ़ाऊं।
दूसरों को हम क्या बोलते हैं?
पांचो चोर बसे घट भीतर,
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, रावण।
पांचो चोर बसे घट भीतर, उनको मार गिराऊं राम को रे जाऊं। मैं अपने राम को रिझाऊं।
उस परमेश्वर को रिझाने के लिए हमें इतना काम तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने संगीत की अलग अलग परिभाषा दी है, लेकिन सबसे अच्छी परिभाषा ये है कि वो संगीत ईश्वर तक पहुंचने की सबसे सरल सीढ़ी है। चलते फिरते अनहद नाद का रियाज करते रहे, ऐसा कहते हैं जो रॉयल पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं वो कम बोलते हैं। कम बोलना मतलब साइलेंस में रहना। आज हमारी मुरली होती है जो सुबह सुबह, आप में से आई होप कुछ लोग मुरली सुनना शुरू करेंगे। पहले मैं नहीं सुनता था लेकिन जब से मैंने मुरली सुनना शुरू की तो मुझे ऐसा लगा कि परमात्मा ने शायद मुझे चुना है ये ज्ञान सुनने के लिए। जो ज्ञान जब मैं जीवन में धारण करता हूं तो मेरा जीवन कीचड़ में कमल की तरह खिल जाता है। मेरा अपनी पत्नी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं, मैं अब बच्चों को कम डांटता हूं। आज का जो स्लोगन था, आपने जिन्होंने मुरली सुनी होगी वो स्लोगन था कि साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है, है ना। मंत्रोच्चारण करके, ओम की ध्वनि करके फिर भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम, वो स्वीट होम है जहां से हम आए हैं और फिर से हमें वहीं जाना है। ये रंगमंच पे हम थोड़े दिन के लिए आए हैं। मृत्यु अकाल ही है आजकल। बहुत कम खुशनसीब है जिनकी मृत्यु स्वाभाविक हो रही है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं अभी। बाबा कहता है विनाश होने वाला। विनाश क्या होता है? विनाश वो जब हमारा शरीर ये खत्म हो जाएगा, वही हमारे लिए जिस दिन हमारी मृत्यु है वही विनाश है। तो उस विनाश से पहले अपने आप को तैयार कर लें उस नई दुनिया में जाने के लिए, उस जन्नत में, उस स्वर्ग में जाने के लिए जहां का वीजा अभी मिल रहा है, थोड़े दिन में बंद हो जाएगा। तो आई होप आप सब वो वीजा ले लेंगे और अपना पासपोर्ट रेडी रखेंगे, है ना। अगर आप अष्टांग योग की भी बात करें तो उसमें यम नियम आसन धारण, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि पे ही बात रुकती है। तो आखिर में मैं बस यही बोलूंगा कि जो मैंने किया वही मैं आपको कह रहा हूं, इसमें कोई झूठ नहीं है। मेरा चेहरा ये बात बोलता है कि मैं बहुत खुश इंसान हूं। इसका मतलब ये नहीं मुझे परेशानी नहीं है। मेरे पास परेशानियों से लड़ने के लिए मेरा भगवान साथ है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। खुदा से बड़ा, उस परमात्मा से बड़ा कुछ नहीं है। अगर उसका हाथ हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। ओम शांति।